यहाँ पर नवद्वीप में श्री गौर सुंदर शिवास के फूलों के बगीचे के शयन मंडप में पलंग पर बैठे हुए हैं। उनकी चारों तरफ उनके प्रिय भक्त हैं और वे ब्रज निकुंज में श्री श्री राधा माधव की आरती दर्शन में खोए हुए हैं। आरती दर्शन करके प्रभु प्रेम से हरि बोल बोलते हैं और ये सुनते ही आप अपनी बाह्य दशा लाभ करते हो, अर्थात आप अपने साधक आवेश में लौट आते हो और वहाँ वृंदावन में जो राधा माधव की आरती का गीत गा रहे थे उसे समाप्त करते हो। गौर सुंदर भी बाह्य दशा पाकर नितायशांत और अद्वैत प्रभु को कितने प्रेम से आलिंगन कर रहे हैं। आप श्री गौर सुंदर के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं और फिर गौर सुंदर अपनी गैलरी में एक सुसज्जित रत्नासन पे बैठ जाते हैं। देखिए, उनकी दाईं तरफ नितायचांद है, बाईं तरफ अद्वैत प्रभु बैठे हुए हैं और तभी श्री गुरुदेव आपकी तरफ इशारा करते हैं। आप सोने के बर्तन में सुगंधित जल भरकर और एक सोने का वॉश बेसिन लाकर तीनों प्रभु के मुंह धुला देते हैं और फिर पतले कपड़े से पोंछ देते हैं। इसके बाद तीनों प्रभु की वेशभूषा करके आप उन्हें मणियों से जड़ा हुआ आईना दिखाते हैं। उसके बाद आप आरती सजा कर उस थाली को श्री रूप गोस्वामी के हाथ में देते हैं। वे उसे स्वरूप दामोदर को प्रदान करते हैं और फिर स्वरूप दामोदर जी तीनों प्रभु की आरती उतारते हैं। गौर सुंदर आईने में अपने मुख को दर्शन करते ही ब्रज के भाव में विभोर हो जाते हैं। श्री स्वरूप दामोदर भी गौर सुंदर का दिल जानकर ब्रज में श्री श्री राधा कृष्ण के गान छेड़ देते हैं। जुगल सरकार निकुंज मंदिर से अपने घर की तरफ जा रहे हैं। स्वरूप दामोदर जी इसी को लीला पद में गा रहे हैं। इस सुंदर पद को सुनकर आप सब भाव विभोर हो जाते हो और आप भी सभी भक्तों के साथ ब्रज रस में फिर से निमग्न हो जाते हो। वो देखिए, ब्रज निकुंज में सखियां श्री श्री राधा कृष्ण की आरती दर्शन करते हुए कैसे नृत्य कर रहे हैं, कीर्तन में विभोर हैं और आप सब तो भूल ही गई हैं कि घर जाना है। वृंदा जी आकर डरी हुई सी बोलती है कि अरे जल्दी जल्दी तुम घर चलो, और फिर वो शुभा नाम की एक साड़ी को इशारा करती है। शुभा जोर जोर से बोलने लगती है, ओ कमल नयन और ओ सखी, तुम लोग अभी जल्दी से उठो, ओ राधे तुम्हारा पति अभी अभी आ जाएगा। वो नौकरों से दूध की बाल्टी ले करके आ जाएगा गौशाला से, तुम जल्दी से उठो और पूजा पाठ में लग जाओ, वो ऐसा कहेगा। ये कहने से पहले ही तुम कुंज से जल्दी जल्दी अपने शयन मंदिर में चले जाओ। और फिर कन्हैया जी को देखकर शुभा कहने लगी, ओ कृष्णा, अब प्रिया जी की सास जल्दी ही इस पर संदेह करना शुरू करेगी और ये अभिमन्यु भी, वो कितने कटुभाषी है, कड़वा बोलता है और हमेशा दोष धरता है। इसकी जो ये ननद है ये तो हमेशा गुस्सा हुई रहती है और इसकी निंदा करने पे तुली हुई रहती है। अब रात्रि खत्म होने वाली है, जल्दी जल्दी इस सरला बालिका को तुम क्यों नहीं छोड़ रहे हो। सारी की ऐसी बातें सुनकर राधा जी का हृदय एकदम टूट जाता है। वो अपनी आँखों को शांत नहीं कर पाती। वो श्री कृष्ण के विरह में दुखी होकर श्री कृष्ण के पीत उत्तरीय को ले करके अपने अंग को उसी पीले वस्त्र से ढक करके वो उठ जाती है। श्रीमती की उस भय व्याकुल आँखों को देख करके श्री कृष्ण भी उनका नील वस्त्र लेकर पलंग से उठ जाते हैं। दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़कर कुंज से बाहर आते हैं। देखिए श्याम सुंदर कितने सुंदर लग रहे हैं। बाई हाथ ने प्रिया जी के हाथों को पकड़ रखा है, दाहिने हाथ में उनके बंसी है। वे ऐसे लग रहे हैं जैसे कि बिजली नव जलधर को अपने आलिंगन में बंद कर रखी है। आप में से कोई सोने का भृंगार, कोई सोने की लकड़ी युक्त पंखा, कोई मणि दर्पण, कोई कुमकुम चंद्र के पात्र और कोई तांबुल पत्र, कोई साड़ी और शुक को लेकर कुंज से जल्दी जल्दी बाहर आ जाती है। एक सखी सिंदूर का डिब्बिया उठा लेती है, कोई तो टूटे हुए मोतियों को उठा लेती है। रतिमंजरी पलंग से कानों के भूषण को उठा लेती है, इयररिंग्स को, और श्रीमती के कानों में पहना देती है। रूपमंजरी पलंग से ईश्वरी की कंचुलिका अर्थात बॉडिस लेकर श्रीमती को दे देती है। गुरुमंजरी पिकदानी से जुगल का चपाया हुआ तांबूल लेकर आप लोगों को दे देती है। मंजूलाली मंजरी श्री युगल के जो टूटा हुआ हार था और चंदन सब के आप लोगों को बांट देती है। श्याम सुंदर के अंग में नील वस्त्र और रायमणि के अंग में पीत वस्त्र को देखकर आप सब हंसने लगती हैं और एक दूसरे को अपनी आंखों के इशारे से दिखाने लगती हैं। पर श्री राधा माधव को कुछ समझ में नहीं आता है, वो तो बस एक दूसरे के मुख की तरफ देखते हुए मंत्र मुग्ध की तरह खड़े हैं। और तभी ललिता सखी सूरज की निंदा करते हुए प्रिया जी से कहती हैं, राधे वो देखो ये सूरज, ये अपनी आदत से कभी बाज नहीं आएगा। सुंदरी रमणियों के साथ अपने प्रेमी का प्रेम विलास भंग करता है और इसी पाप से उसको कुष्ठ रोग भी हो गया है। कुष्ठ रोग की वजह से उसके दोनों पैर गल गए हैं, फिर भी वो अपनी आदत त्याग नहीं कर सकता। ललिता की बातें सुनकर प्रिया जी हंस पड़ती हैं, कहती हैं, ललिते ये जो अरुण है उसके पैर नहीं है, फिर भी देखो ना, सूर्यास्त होने के एक क्षण के अंदर ही पूरे आकाश को लांग कर फिर से पूरब दिशा में आकर उठ जाता है। अगर इसके पैर होते तो रात नाम की कोई चीज ही नहीं होती। तब देखिए श्याम सुंदर कितने मीठे वचन बोलते हैं, वृंदावन में भोर की शोभा दर्शन करके वे श्रृंगार रस में भावित हो जाते हैं और प्रिया जी के पास वे वृंदावन की इस रमणीय शोभा का वर्णन करते हैं। कह रहे हैं श्याम सुंदर, ओ प्रिय वो देखो, कोई प्रेमिका अगर अपने प्रेमी को देखती है कि उसके अंग पर दूसरी किसी प्रेमिका का चिन्ह है तो फिर वो ईर्ष्या से लाल लाल हो जाती है। उसी तरह ये पूर्व की दिशा भी एक नई नवेली बहू है और वो देख रही है कि अपने पति सूर्यदेव किसी और दिशा के साथ प्रेम विलास कर रहा है, तो वो भी ईर्ष्या से लाल लाल हो गई है। ये कबूतर देखो कैसी सत्कार कर रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई प्रेमिका अपने प्रेमी के साथ प्रेम विलास करते हुए जब बहुत ज्यादा आनंदित हो जाती है तो कैसे सत्कार करती है, उस तरह से ये कबूतर भी आवाज कर रहा है। और वो लाल रंग का कमल देखो, वो तो अरुण के किरणों में और ज्यादा गुलाबी हो गया है और चक्रवा की आनंद से विह्वल होकर उसे चूम रहा है। ये मलय पवन कितना सुशीतल है और इसमें कमल का खुशबू है, ये लताओं को नृत्य की शिक्षा दे रहा है क्योंकि लताएं कैसे नाच रही हैं इस पवन की वजह से। और ये पवन नाचता हुआ मृदु मंद गति से बह रहा है। इस तरह एक दूसरे के साथ जुगल सरकार बड़ी मधुर वार्तालाप करते हुए खड़े हैं, घर जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। ये देखकर वृंदा जी वो बुढ़िया बंदरी कक्खटी की तरफ इशारा करती है, तो कक्खटी पेड़ पर बैठकर कहने लगती है, सज्जन वृंद सुनिए सुनिए, ये जो भोर की बेला है ये परम पूजनीय है और वो एक तपस्विनी की तरह लाल रंग के वस्त्र पहनी हुई है और जो ये लंबी लंबी सूर्यों की किरण मालाएं हैं वो इसकी जटाएं हैं। तो इस तरह से जटायुक्त अर्थात जटिला हो करके ये भोर की बेला अब आ चुकी है। तो यहाँ पर कक्खटी तो जटिला अर्थात भोर की बेला की जटा के बारे में बोल रही है, लेकिन फिर भी ये जटिला शब्द सुनते ही श्री श्री राधा कृष्ण अपने कपड़ों को और माला को संभालते हुए जल्दी जल्दी भागने की कोशिश करते हैं। सुनकर सखियां भी वे चमकित हो जाती हैं, लेकिन फिर श्री श्री राधा माधव विरह के डर से बहुत मायूस हो जाते हैं। उनके कमल वदन फीका पड़ जाता है। वे विरह के दर्द से अधीर होकर एक दूसरे की तरफ ताकते रहते हैं और आप सखियां तब उनको आश्वासन देती हैं, अरे अरे ये क्या, तुम लोग फिर मिलोगे, चलो चलो अभी। इस तरह बड़े कष्ट से आप उनको कदम खंडी तक लाते हैं और फिर इसी विरह चित्त से श्री कृष्ण नंदीश्वर की तरफ चले जाते हैं और आपके साथ श्रीमती जावट की तरफ आ जाती हैं। रास्ते में ये सुनिए प्रिया जी ललिता से क्या कह रही हैं। प्रिया जी कह रही हैं, सखी तुमने तो मुझे वादा किया था कि तुम श्याम सुंदर का संग कराओगे और मुझे बड़े अमृत रस का पान कराओगे। अभी अभी तो मुझे घर से लाई थी और अभी अभी घर लौटा रही हो। देखिए तो श्रीमती का अनुराग कितना प्रबल है कि वो सब कुछ भूल गई है। आप सखियां एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराती हो और इस तरह से राधा जी को आप महल के पीछे एक गोपनीय द्वार है उससे आप उन्हें प्रवेश कराती हैं। द्वार से ही बाकी सखियां तो अपने अपने घर चली जाती हैं। राधा जी आपके साथ और विशाखा जी के साथ अपने शयन गृह में प्रवेश करती हैं। आप वहां बालकनी में एक सोने की चौकी रखती हैं, फिर उस पर प्रिया जी को बिठाकर सुगंधित जल से उनका चरण धो देती हैं, फिर अपने दुपट्टे से उनके सुंदर सुंदर चरणों को पोंछ देती हैं। राधा जी को शयन कक्ष में ले जाकर उन्हें रत्ने के पलंग पर आप सुलाती हैं और फिर आप धीरे धीरे उनका चरण संवाहन करने लगती हैं। प्रिया जी विरह कातर हैं, वो तो सिर्फ श्याम श्याम रट रही हैं। तब आप कहती हैं कि ईश्वरी तुम अभी सो जाओ, सोओगी नहीं तो सपना कैसे देखोगी, सपना नहीं देखोगी तो प्राण बल्लभ कैसे आएंगी। तब श्रीमती समझ जाती हैं और वो निद्रा जाती हैं ताकि उनको सपने में प्राणनाथ का दर्शन हो। आप तभी बाकी मंजरियों का भी चरण संवाहन करती हैं, गुरु मंजरी का चरण संवाहन करती हैं, सबको सुलाकर फिर अपने कमरे में शयन करती हैं। यहाँ देखिए नवद्वीप में क्या हो रहा है। नवद्वीप में श्री गौरांग सुंदर श्रीवास पांडी के पुष्प के बगीचे के शयन मंडप के गैलरी में बैठे हुए हैं। सभी भक्त वृंदों के साथ आप भी भाव विभोर हो गए हैं। स्वरूप गोस्वामी श्री राधा कृष्णा और सखियां किस तरह अपने अपने घर गए, ऐसे पद दान कर रहे हैं। गौरांग सुंदर सुनते सुनते भाव के आवेश में पुकार कर उठते हैं, जय राधे श्याम। स्वरूप गोस्वामी वे अपने गान को समाप्त करते हैं। महाप्रभु तो आधे होश में हैं, आधे बेहोश हैं, और इसी हालत में वे अपने भक्तों के साथ अपने घर लौटते हैं। देखिए, दाई तरफ निताय चांद है, बाई तरफ अद्वैत प्रभु है, पीछे पीछे आप भी चल रहे हैं भक्तों के साथ। सभी भक्त ब्रज के भाव में हैं। आप डरी हुई आंखों से यहाँ वहाँ देख रहे हैं कि कहीं कोई देख तो नहीं रहा है, और इस तरह से आप गौर सुंदर के साथ मेन गेट पर पहुँचते हैं। वहाँ से गौर सुंदर दोनों प्रभुओं को प्रेम आलिंगन करते हैं, सभी भक्तों को अपनी बाहों में भर के फिर उनको विदाई देते हैं, अपने घर में प्रवेश करते हैं। सभी भक्त अपने अपने घर लौट रहे हैं, लेकिन फिर भी निताय चांद को प्रभु से इतना प्रेम है कि वे उनके साथ ही घर में प्रवेश करते हैं, और फिर आप भी उनके पीछे पीछे चलते हो। उनके शयन कक्ष में पहुंचकर बालकनी में सोने की एक चौकी रखते हो, वहां आप प्रभु को धीरे से बिठाते हो, सुगंधित जल से उनके चरण धो देते हो, अपनी दुपट्टे से उनके सुंदर चरणों को पोंछ देते हो। गौर सुंदर कमरे के अंदर जाकर रत्नों के पलंग पर सो जाते हैं, तो आप उनका चरण संवाहन करते हो। जब हमारे प्राण प्यारे गौरांग सुंदर निद्रा जाते हैं, तब आप निताय चांद से लेकर गुरुदेव तक सबका चरण सेवा करते हो, उन सब को सुलाकर तब अपने कक्ष में विश्राम करते हो। जय निताय, जय गौर।